नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। कहा, सरकार विकसित भारत के निर्माण के लिए आधुनिक अवसंरचना में अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इंडिया इनोवेट्स कार्यक्रम में शामिल हुई। शहरों और समाज को बेहतर बनाने में युवाओं की भूमिका पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया और दिल्ली खेल महाकुंभ का आज समापन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत के निर्माण के लिए आधुनिक अवसंरचना में अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 40 एकड़ में फैले रखरखाव, मरम्मत और नवीनीकरण MRO सुविधा केंद्र की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन विकसित यूपी विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय है।
यहां से दुनिया के लिए विमान तो उड़ेंगे ही, साथ ही एक विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का भी प्रतीक बनेगा। मैं उत्तर प्रदेश को, विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को इस भव्य एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक महीने से पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण कई देशों में भोजन, पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं की कमी हो रही है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत अपने नागरिकों की शक्ति पर भरोसा करते हुए पूरी ताकत से इस संकट का सामना कर रहा है।
भारत बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस, ये जहां युद्ध चल रहा है ना, इस युद्ध से प्रभावित इलाके से मंगाता है। इसलिए सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर इस संकट का बोझ न पड़े।
राजधानी में आज लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल द्वारा वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा में नैतिकता, करुणा और मूल्यों के महत्व पर बल दिया गया। वहीं श्री सूद ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वंदे मातरम एक ऐसा गीत है जो राष्ट्र को प्रेरित करता है और देश सेवा की भावना से गहराई से जुड़ा हुआ है।
यहाँ के प्रशासन ने अपने आप को उस भावना के साथ जोड़ते हुए नागरिकों की सेवा का जो प्रण लिया है, ये अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है। हर जगह इसको आगे बढ़ाना चाहिए और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर जिस प्रकार से देश भर में इसके लिए काम हो रहा है, उसमें लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल का इसको आगे बढ़ाना अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु से भेंट की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के विकास, जन कल्याण और भविष्य की दिशा पर बात की गई। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष का हरित बजट इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है, जिसमें बुनियादी ढांचा को गति, पर्यावरण को प्राथमिकता और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प केंद्र में है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज इंडिया इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवा अन्वेषक के विचार केवल तकनीक तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने शहरों को बेहतर बनाने, लोकतंत्र को मजबूत करने और समाज को अधिक सक्षम बनाने की दिशा में ठोस समाधान प्रस्तुत किए। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वही पीढ़ी है जो विचार को नवाचार में और नवाचार को प्रभाव में बदलने की क्षमता रखती है।
देश के कोने कोने से आए वो युवा चेहरे जो देश को आगे ले जाने के लिए उत्साहित हैं, आपने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, इंडिया इनोवेट, और पूरे देश से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और मात्र 5,000 लोगों को सेलेक्ट किया गया। मैं आपको ढेर सारी बधाई देती हूँ।
केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा उपभोक्ता कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज दिल्ली में पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस सेवाओं के विस्तार और शहरी क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं के रखरखाव पर एक गोलमेज समीक्षा बैठक की। इस बैठक में प्रमुख हितधारकों ने शहरी क्षेत्र में प्राकृतिक गैस नेटवर्क के विस्तार में तेजी लाने और आवश्यक सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विचार विमर्श किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बदलते वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य के बारे में चर्चा की। श्री पुरी ने राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को प्राकृतिक गैस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मनोहर लाल ने आर्थिक विकास के संचालक के रूप में शहरों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने एकल खिड़की अनुमोदन, शहरी नियोजन में प्राकृतिक गैस बुनियादी ढांचे का एकीकरण, देश के प्रत्येक व्यक्ति तक संपर्क की सुविधा और वर्तमान शहरी विकास पहलों के साथ समन्वय सहित प्रमुख प्राथमिकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। 50 लाख नए प्राकृतिक गैस कनेक्शन प्रदान करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने, गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाने और ईंधन की कालाबाजारी रोकने की आवश्यकता पर बल दिया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री सूद ने बताया कि दिल्ली में रह रहे छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए 5 किलोग्राम के छोटे गैस सिलेंडर की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से अपने सपनों को साकार करने दिल्ली आने वाले ये छात्र सरकार की जिम्मेदारी है। इस दौरान विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ पीएनजी सेवाओं के विस्तार और आवश्यक आपूर्ति तंत्र को सुचारू बनाए रखने पर भी चर्चा की गई। सरकार ने सोशल मीडिया पर उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि भारत में केवल 5 से 10 दिन का ही तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कमी नहीं है। ईंधन आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और इसकी लगातार निगरानी की जा रही है। सरकार ने नागरिकों से कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ईंधन और गैस की उपलब्धता के संबंध में केवल आधिकारिक सूत्रों द्वारा सत्यापित जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी को एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रसार भारती के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक कदम उठाया है। इस समझौते को कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान भारत मंडपम में दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया। इस पहल का उद्देश्य एक अत्याधुनिक एकीकृत इकोसिस्टम तैयार करना है जो मीडिया उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों फिल्म, टेलीविजन, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स को एक ही मंच पर एक साथ लाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को एक वैश्विक मीडिया और मनोरंजन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण पहल बताया। वहीं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार दिल्ली को दुनिया भर के निवेशकों, निर्माताओं और रचनात्मक पेशेवरों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने आज नई दिल्ली में पात्र निर्माता आयातकों EMI के लिए शुल्क स्थगन योजना पर एक संयुक्त जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सत्र में एक विस्तृत प्रस्तुति के बाद व्यापार और उद्योग जगत के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए सीमा शुल्क विभाग के सदस्य योगेंद्र गर्ग ने कहा कि ये योजना विश्वास आधारित दृष्टिकोण अपनाती है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल सहित VVIP यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए विमान संचालकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट।
डीजीसीए ने परिचालन प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन, संचालकों, चालक दल और स्थानीय अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय और पायलट इन कमांड के अंतिम अधिकार पर जोर दिया। स्पष्ट किया गया कि केवल उचित रखरखाव वाले विमान और पर्याप्त चालक दल वाले विमानों का ही उपयोग विशेष अतिथि उड़ानों के लिए किया जाना चाहिए। नियामक ने कहा कि विमान के पास वायु योग्यता प्रमाण पत्र और वैध समीक्षा प्रमाण पत्र होना चाहिए, संचार और नेविगेशन उपकरण से सुसज्जित होना चाहिए और ऐसी उड़ानों से पहले उसका निरीक्षण और प्रमाणीकरण होना चाहिए। डीजीसीए ने सभी संबंधित संचालकों को तत्काल प्रभाव से इन दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर एक तस्कर को आनंद पर्वत क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से 130 कार्टन मादक पदार्थ और एक मालवाहक चार पहिया वाहन जब्त किया गया। पुलिस ने बताया है कि मामले में आगे की जांच की जा रही है। वहीं दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा ने आज पुलिस मुख्यालय के यातायात इकाई में शामिल की गई 76 नई क्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे अनाधिकृत सड़क किनारे पार्किंग और वाहनों के खराब होने से उत्पन्न होने वाले जाम की समस्या को तेजी से हटाने में मदद मिलेगी। इससे यातायात सुचारू रूप से चलेगा। राजधानी में 13 फरवरी से चल रहे खेल महाकुंभ का आज समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी विजेताओं को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लगातार ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करती रहेगी। वहीं आशीष सूद ने कहा कि राज्य के 280 विद्यालयों में बाल वाटिका आयोजित की जा रही है। इस खेल महाकुंभ में 7 प्रमुख खेलों में प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई थी। इनमें फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी शामिल हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 राष्ट्रीय राजधानी को वैश्विक फिल्म केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
31 मार्च तक चलने वाले इस फिल्मोत्सव में 47 देशों की 130 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। वहीं 101 देशों से 2000 से अधिक प्रविष्टियों में से चयनित यह फिल्म महोत्सव इसकी वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। इस महोत्सव का उद्देश्य रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, फिल्म पर्यटन को प्रोत्साहित करना, नई प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करना और रचनाकारों को एक ही मंच पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य दिल्ली को एक वैश्विक सिनेमाई केंद्र के रूप में बढ़ावा देना और सिनेवर्स एक्सपो तथा सिने एक्सचेंज के माध्यम से नेटवर्किंग को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा ये महोत्सव युवा प्रतिभाओं को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के साथ साथ पर्यटन, रोजगार तथा रचनात्मक उद्योगों को और अधिक सशक्त बनाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए नितिका गुप्ता।
दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में 223वीं रैंक हासिल करने पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की उच्च शिक्षा तंत्र की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में संस्थानों ने अनुसंधान, नवाचार और अकादमिक गुणवत्ता में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 132वीं कड़ी होगी। राजधानी में आज दिनभर मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। कहा, सरकार विकसित भारत के निर्माण के लिए आधुनिक अवसंरचना में अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इंडिया इनोवेट्स कार्यक्रम में शामिल हुई। शहरों और समाज को बेहतर बनाने में युवाओं की भूमिका पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया और दिल्ली खेल महाकुंभ का आज समापन। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।